नीति वचन अध्याय 23, नीति वचन अध्याय 23 पद 1 से 3 एक ही विचार के हैं। नीति वचन अध्याय 23 पद 1 से लेकर 3 तक, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वो धोखे का भोजन है। आप वहां जाकर गले तक भरकर भोजन खाने की लालसा मत करना। ये तरह तरह का भोजन वास्तव में भूख बढ़ाने के लिए होता है, पेट भरने की नहीं। ऐसा न हो कि तरह तरह भोजन को खाने लगे। अतः जो सामने रखा हो उसे देखो और समझो। इस कारण यदि आपको भूख लगे तो बुरी लालसा मत करना। यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा सा खाकर उठ जाना, क्योंकि उसका उत्तम भोजन वास्तव में छल के प्रयोजन से है। नीति वचन अध्याय 23 पद 4। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। बाइबल कहती है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। धनी बनना आपके जीवन का लक्ष्य ना बने। भजन संहिता 62 का 10 पद, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर उचित समझेगा तो धन संपत्ति बढ़ाएगा, इसलिए उस पर मन ना लगाना। नीति वचन अध्याय 23 पद 5। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वो उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। आगे के 3 पद एक साथ जुड़े हुए हैं। नीति वचन अध्याय 23 पद 6। जो ढा से देखता है उसकी रोटी ना खाना। ये पुराने अंधविश्वास की बात नहीं है। कुछ लोगों की निगाह बुरी होती है कि नजर लग जाए। ये काफी रोचक है। बॉक्सिंग के प्रारंभिक खेल देखें, जहां कोने में कुछ मनुष्य खड़े रहते हैं जिनकी ओर बॉक्सर जानबूझकर नहीं देखता। लेकिन यहां संदर्भ ये नहीं है कि कोई ऐसी शक्ति होती है कि कोई आपको नजर लगा दे। यहां वो उस मनुष्य के संदर्भ में कह रहा था जिसका मन बुरा है। जो ढा से देखता है उसकी रोटी ना खाना। नीति वचन अध्याय 23 पद 6 और 7। और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसे वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। यदि वो अपने मन में बुराई रखता है तब वो एक बुरा मनुष्य है। नीति वचन अध्याय 23 पद 7 से लेकर 9 तक। वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वो तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। फिर से जैसा पिछले अध्याय में था। नीति वचन अध्याय 23 पद 10 और 11। पुराने सिवानों को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर विधवाओं और अनाथों की सुधि लेता है और निर्धनों की भी। यदि आप विधवाओं, अनाथों और निर्धनों में एक है तो आप विशेष जन हैं। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। नीति वचन अध्याय 23 पद 12 और 13। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, परंतु आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। नीति वचन अध्याय 23 पद 14। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। जैसे हमने कहा, लड़के को शिक्षा उस मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए। इब्रानी शब्द के अनुसार लड़के को शिक्षा उसके मार्ग के अनुसार दे। बच्चों के व्यवहार में बड़ा अंतर होता है। कुछ बच्चे दंड से अनुशासित हो जाते हैं, पर दूसरे बच्चों को चाहे पूरे दिन पीटो, उससे भी कोई लाभ न होगा। इसलिए बच्चों को समझाने के लिए उनके स्वभाव को समझना आवश्यक है। आप उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार शिक्षा दें। लड़कों को शिक्षा उसके मार की दे। यदि बच्चे पर चीखने चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं है, तो अनुशासन का दूसरा मार्ग ढूंढें। तब आप अनुशासन का प्रभावी रूप देख सकेंगे। कुछ बच्चों के लिए उनकी सुविधाओं और इच्छाओं से वंचित कर देना अनुशासन का अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन मैं बच्चों को पीटने की वकालत नहीं करता और ना ही वचन ऐसा कहता है। लेकिन कुछ बच्चों के लिए कभी डांटना बुरा विचार नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था, वर्षों पूर्व मैं बच्चों के पालन पोषण करने के बारे में काफी कुछ जानता था, परंतु आज उतना नहीं जानता हूं। हमारा पहला आराधनालय एक ही कमरे का आराधनालय था, जिसमें संडे स्कूल के लिए हम पर्दा डालकर उसी कमरे को बांट लेते थे। ये एक कठिन स्थिति थी, क्योंकि जो महिला हाई स्कूल की कक्षा को पढ़ती थी, उसी छोटी बच्ची थी जो कभी अनुशासन में नहीं रही। जो बच्चे उसकी देखभाल में छोड़े जाते थे, वे माता पिता के पास शिकायत लाते थे कि ये छोटी बच्ची अनुशासित नहीं थी। वो रोना आरंभ करती थी, क्योंकि हम एक ही कमरे में रहते थे जो पर्दे से विभाजित था। वो पूरे संडे स्कूल को परेशान कर देती थी। मैं उस समय जवान था और धर्म सेवकाई में नया था, और मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं था, इसलिए मेरे पास बच्चों के प्रशिक्षण के सब उत्तर थे। दूसरे रविवार को हम कलीसिया में थे। उस बच्ची की माता ने कक्षा को जैसे ही पढ़ाना आरंभ किया, तो फिर से उस बच्ची ने चीखना चिल्लाना आरंभ किया। मैं वहां गया और उस बच्ची को आराम से बाहर घूमने चलने को कहा। ऐसा मैं अब नहीं करता। मैंने उस बच्ची को बाहर ले जाकर चांटा मारा, उसको और आगे ले गया और मनोविज्ञान प्रयोग किया। मैंने सोचा इससे बहुत लाभ होगा। ऐसा ही हुआ। मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा। मैं आपको बताता हूं, तब से जब भी वो छोटी बच्ची रोना शुरू करती, मैं उसे ताकता और वो तुरंत शांत हो जाती थी। बहुत वर्ष बाद मैं एक कैंप चला रहा था और एक 18 वर्ष की युवती ने मेरे पास आकर कहा, क्या आप जानते हो मैं कौन हूं? मैंने उसे देखा और कहा, मैं नहीं जानता। उसने मुझे अपना नाम बताया तो मैंने अचंभे से कहा, नहीं, वो छोटी लड़की अब जवान महिला हो गई थी। मैं नहीं जानता कि मेरी मार इससे संबंधित है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा सोचना अच्छा लगता है। आगे के कुछ पद युगल बंदी में है। नीतिवचन अध्याय 23 पद 15 और 16। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। यहां मन का मूल अर्थ गुर्दे से है। वे समझते थे कि मनुष्य के गहरे मनोवेग हृदय को नहीं छूते। वैलेंटाइन दिन को न होते हुए भी मनुष्य के गहरे मनोवेग पेट में अनुभव किए जाते हैं। जब आप कोई मनोभाव गहराई से अनुभव करते हैं, तो वो पेट के दायरे में होता है। इसलिए नए नियम में हम पाते हैं, पहला योहन्ना 3:17, तरस खाना, क्योंकि अनुभव करने का गहरा स्थान भीतर है। और हम कहते हैं, मैंने अंतड़ियों के अंदर एक महसूस किया। इस तरह हम कोशिश करते हैं कि अपने मनोभाव दर्शाए जो शारीरिक मनोभाव से अधिक है, अर्थात वो स्थान जहां से मेरे भाव गहराई से आते हैं। यहां पिता अपने पुत्र से कह रहा है, मेरा मन आनंदित होगा, इससे भी कहीं अधिक गहराई में। यदि तू बुद्धिमान हो और जब तू सीधी बातें बोले, तब मेरा मन प्रसन्न होगा। नीति वचन अध्याय 23:17-19। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। सब चीजों का अंत होगा, उसके अंत के फल पर ध्यान दो। हर चीज का अंत होगा, इस जीवन का भी अंत होगा, और तब मुझे परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए ध्यान दो। नीति वचन अध्याय 23:20-28। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चितड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्मने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्मने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मग्न होए। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वो डाकू की नाई घात करती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। आगे का भाग अध्याय के अंत तक एक साथ है और अत्यधिक रुचिकर है। नीति वचन अध्याय 23:29-31। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाकमधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाकमधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वो धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, या जब दाख मधु तैयार होता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं वो दाखरस के सड़ने की बात कह रहा है कि जब दाखरस खमीर हो जाए तब उससे दूर रहना। उनके पास बिना नशे के दाखरस भी होता है। दाखरस पककर शराब बन जाए तब छोड़ देना। नीति वचन अध्याय 23:32-33। क्योंकि अंत में वो सर्प की नाई ढसता है और करैत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा, आप अपना नियंत्रण को खो देंगे। नीति वचन 23:33 में आगे लिखा है, और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। जो बातें आप आम तौर पर नहीं बोलते, जो काम आप सामान्य अवस्था में नहीं करते वो बोलने एवं करने लगते हैं, क्योंकि आप मदिरा के प्रभाव में हैं। आप अपनी सूझबूझ खो देंगे। आप तरह तरह के विचित्र काम और मूर्खता की बातें करना आरंभ करेंगे। नीतिवचन अध्याय 23 पद 34। और तू समुद्र के बीच लेटने वाले, तुम बेकार बातें करोगे। नीतिवचन 23 अध्याय पद 34 और 35। या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। आप बहुत मार और घाव के साथ उठेंगे, आपको पता ना रहेगा कि कैसे क्या हुआ। नीतिवचन अध्याय 23 पद 35 में आगे लिखा है, मैं होश में कब आऊं, फिर क्या होगा। नीतिवचन 23 अध्याय पद 35 के अंत में लिखा है, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। नीतिवचन में मदिरा के हानिकारक एवं कष्टदायक प्रभावों को विविध रूप से दर्शाया गया है।